दिन भर 5 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फतल। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, पठानकोट हमले में 6 चरमपंथियों की मौत, लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी भी जारी।
अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, ये केवल कॉम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है। एनकाउंटर केवल 28 घंटे चला है, बाकी का जो चल रहा है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन।
बात करेंगे पंजाब के पूर्व डीजीपी KS ढिल्लों से। मुंबई के प्रणव धनावड़े ने स्कूल क्रिकेट में 1009 रनों की पारी खेल नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।
मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं उतरा कि मेरे को इतना रिकॉर्ड करने का है वगैरह। मेरा बैटिंग करते गया रिकॉर्ड के नजदीक है, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ और मैंने कर दिया।
लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार अमल चौधरी से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पठानकोट हमले पर दुख जताया है। साथ ही नवाज शरीफ ने घटना के मद्देनजर भारत सरकार के बयान और रवैये की तारीफ की और इसे परिपक्व करार दिया। शरीफ ने कहा कि भारत द्वारा दिए गए सुरागों पर वो भी जांच करेंगे। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पठानकोट एयरबेस में हुआ हमला चिंता का विषय है। इस दौरान उन्होंने 6 चरमपंथियों के मारे जाने की पुष्टि की। मुंबई के HT भंडारी इंटर स्कूल कप अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रणव धनवाड़े ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने का करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने 323 गेंदों पर नाबाद 1009 रन बनाए। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में ये पहला मौका है जब किसी बल्लेबाज ने 1000 से बड़ा स्कोर बनाया है। प्रणव ने अपनी पारी में 129 चौके और 59 छक्के जमाए। इस दौरान उन्होंने करीब 116 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। 1899 में इंग्लैंड में खेले गए क्लब मैच में AEJ कॉलिंस ने नाबाद 628 रनों की पारी खेली थी। जर्मनी के कोलोन शहर की कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई है कि नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कई पुरुषों ने उन पर यौन हमले किए और लूटपाट की, जिसके बाद शहर के मेयर ने पुलिस के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। पुलिस का कहना है कि करीब 1000 पुरुष जो नशे में थे वो इसके पीछे शामिल हो सकते हैं। शहर के पुलिस प्रमुख के अनुसार आरोपी पुरुष अरब या उत्तरी अफ्रीकी लग रहे थे। वहीं राजधानी बर्लिन में एक प्रेसवार्ता के दौरान न्याय मंत्री हाइको मास ने कहा कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हैं उनकी पहचान कर उन्हें सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा,
Das was in Köln am Hauptbahnhof und an anderen Plätzen in Deutschland geschehen ist, ist
कोलोन के मुख्य स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए और दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि कहीं ये नए तरह का संगठित अपराध का कोई नया तरीका तो नहीं है, और अधिकारियों को इस पर जो जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। कानून के आगे सभी एक समान हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां कानून लागू नहीं होता। इसमें ट्रेन स्टेशन भी शामिल हैं। जर्मनी के न्याय मंत्री हाइको मास के शब्द। तुर्की की सरकार ने सऊदी अरब और ईरान से अपने कूटनीतिक झगड़े को खत्म करने की अपील की है। तुर्की ने कहा है कि इस विवाद से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ जाएगा। उप प्रधानमंत्री नोमान कुर्तुमुस ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों देश तुरंत इस तनाव को खत्म करें, क्योंकि ये पहले से ही बारूद के ढेर पर हैं। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ जाएगा। उन्होंने ईरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हुए हमले की निंदा की, लेकिन साथ ही शिया धर्मगुरु को फांसी पर चढ़ाए जाने की भी आलोचना की। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर बंदूकों की बिक्री पर लगाम करने की बात छेड़ी है। इसके चलते उन्होंने FBI निदेशक और अटॉर्नी जनरल से अमेरिका में बंदूकों पर सख्ती पाबंदी लगाने की अपनी योजना पर चर्चा की। BBC समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं पठानकोट से। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स बेस का दौरा करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि पठानकोट हमले में अब तक 6 चरमपंथी मारे गए हैं और अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। उन्होंने बताया कि 2 चरमपंथियों के शव बुरी तरह से जल गए हैं और एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। जहां चरमपंथी छिपे हुए थे वहां थोड़ा नुकसान जरूर हुआ है। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि ऐसे संकेत हैं कि चरमपंथियों द्वारा प्रयोग किए गए कुछ उपकरण पाकिस्तान में बने हैं। वैभव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मीडिया को बताया कि पठानकोट में अब तक कुल 6 चरमपंथी मारे जा चुके हैं। हालांकि एयरबेस के अंदर अब भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये ऑपरेशन केवल एक कॉम्बिंग ऑपरेशन है। एयरबेस को जोड़ने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। दूसरी ओर पठानकोट में कल दो दिनों के बाद आज कुछ दुकानें खुली, लेकिन अब भी स्थानीय लोग सकते में हैं। कईयों का मानना है कि पंजाब से सटी भारत पाकिस्तान सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा ना होने की वजह से बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रक्षा मंत्री ने कहा,
अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, ये केवल कॉम्बिंग फॉर सेफ्टी पर्पज है। एनकाउंटर केवल 28 घंटे चला है, बाकी का जो चल रहा है वो कॉम्बिंग ऑपरेशन।
शनिवार को तड़के हुए चरमपंथी हमले में अब तक 7 भारतीय सुरक्षा कर्मियों की मौत हो चुकी है और 20 घायल हुए हैं। इलाके में चरमपंथियों की तलाश के लिए सेना का अभियान शुरू हुए लगभग 60 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। चप्पे चप्पे में भारतीय फौज के जवान गश्त लगा रहे हैं। सोमवार सुबह 4 बजे के बाद अचानक भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों की 2 से 3 बार उड़ने की आवाजें भी आईं। रक्षा मंत्री ने कहा कि अनुमान है कि चरमपंथियों के हथियार पाकिस्तान में बने थे, परंतु किसी भी बात की तब तक पुष्टि नहीं की जा सकती जब तक NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती।
अभी जो सामान मिला है उसमें देयर आर सम इंडिकेशंस दैट सम ऑफ द मटेरियल इज मेड इन पाकिस्तान, दैट्स ऑल। बाकी इन्वेस्टिगेशन NIO को करने दो, किसके साथ उनका संबंध था, किसने उनको भेजा था, इन्वेस्टिगेशन के बाद में आ जाएगा और उसके बाद वंस द ऑपरेशन इज कॉल्ड ऑफ वी विल टेक द कॉल ऑन एनी अदर इश्यूज।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि बेहद मुश्किल जगह पर ये कार्रवाई की गई और इसलिए उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस की भी तारीफ की। हालांकि उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं चूक होने की गुंजाइश है, परंतु सुरक्षा के मामले में कहीं भी कमी नहीं आई। उन्होंने कहा,
आर्म फोर्सेस, आर्मी के, एयरफोर्स के गरुड़, NSG और डिफेंस सिक्योरिटी कॉप, इनको सबको उनकी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। मुझे थोड़े गैप्स दिखते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद समझ जाएंगे, लेकिन आई डोंट थिंक हम लोगों ने सिक्योरिटी पे कुछ कॉम्प्रोमाइज किया।
केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के शब्द। पठानकोट एयरबेस उत्तर भारत के सबसे बड़े एयरबेस में से एक है और भारतीय सेना दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। दूसरी ओर यहां सीमा पर कंटीली तारों वाली 8 फुट लंबी दीवारें हैं।
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। पठानकोट में चल रहे ऑपरेशन से दूर दिल्ली के राजनीतिक हलकों में तीखे सवाल जवाबों का एक अलग दौर चला। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पठानकोट में चल रहे ऑपरेशन के बावजूद पाकिस्तान से बातचीत कायम रखने पर कड़ी आपत्ति जताई। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से आतंकवाद का राजनीतिकरण न करने की अपील की और कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने ओछी राजनीति न करें। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या आर्य।
रूस के उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसके बाद भारत के गुरदासपुर में हमला। फिर मोदी लाहौर में नवाज शरीफ से मिले और उसके बाद पठानकोट में हमला। इन्हीं वाक्यों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने आज दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द करने की मांग की। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता कर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे। मसलन बैंकॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में ऐसी स्थिति होने पर दोनों देशों के बीच क्या सहमति बनी थी और प्रधानमंत्री मोदी ने किस आश्वासन के भरोसे अचानक लाहौर जाने का फैसला किया।
उस समय वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल जांजुआ मौजूद नहीं थे, क्या उससे हमको कोई संदेश नहीं लेना चाहिए था कि वहां का व्यवस्था का अहम हिस्सा शायद इस प्रक्रिया का समर्थन नहीं कर रहा, खुले विरोध में नहीं है पर इसके पक्ष में नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की ओर से पत्रकारों को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया।
हम किसी तरह का न सवाल करेंगे और न जवाब देंगे। हमारी प्राथमिकता है कि देश की सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता होनी चाहिए और जो ताकतें देश की सुरक्षा पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है उनका खात्मा होना चाहिए।
लेकिन आनंद शर्मा के मुताबिक राजनीतिकरण का आरोप तब भी जायज था जब कांग्रेस के दौर में सरकार की ओर से वार्ता की पहल को बार बार राजनीति में घसीटा गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि आतंकवाद एक अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है और पूरी दुनिया एक होकर उसका सामना कर रही है। ऐसे हालात में ऐसे कोई बयान नहीं दिए जाने चाहिए जो आतंकवादियों का आत्मबल बढ़ाएं और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुहिम को कमजोर करें।
हम कितने भी सैद्धांतिक लड़ाई लड़ते हों, हम कितनी भी सियासी रूप से एक दूसरे से खिलाफ हों, लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हम एकजुट होकर के एक स्वर में देश के आन बान शान के साथ खड़े दिखते हैं।
पठानकोट में हमला होने से ठीक एक हफ्ता पहले प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान से लौटते हुए लाहौर गए थे। मुलाकात के बाद एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि वो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हवाई अड्डा आकर उनका स्वागत करने की पहल से निजी तौर पर बहुत प्रभावित हुए। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी ने कहा था कि मुलाकात में दोनों देशों के बीच ज्यादा बातचीत, आम लोगों में मेलजोल और सद्भाव का माहौल बनाने पर सहमति बनी। दिव्या आर्य, बीबीसी दिल्ली।
इस बीच खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को फोन कर पठानकोट की घटना पर दुख और खेद प्रकट किया है। नवाज शरीफ आजकल श्रीलंका की सरकारी यात्रा पर गए हुए हैं। मैंने पूर्व राजनयिक राजीव डोगरा से संपर्क किया और पूछा कि आप नवाज शरीफ के इस जेस्चर को किस तरह से देखते हैं।
पहली बात तो ये है कि एक देश के प्रधानमंत्री ने मोदी साहब को एक एश्योरेंस दी है, तो मुझे नहीं लगता उसको किसी संदेह से देखना चाहिए या किसी क्रिटिकल एंगल से देखना चाहिए। मैं तो जब तक ये बात गलत ना साबित हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि हमें फेस वैल्यू पे उनके एश्योरेंस को देखना चाहिए और उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगले 2-3 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएं नवाज शरीफ साहब, जैसे उन्होंने कहा है कि टेररिस्ट के अगेंस्ट एक्शन, कॉन्क्रीट एक्शन पाकिस्तान में हो। ये एक और बात है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे शख्सियत हैं और कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो शायद इस बात से खुश ना हो, पर वो उनकी अंदरूनी बात है। जो आज की डेवलपमेंट है, मेरे को ये लगता है कि हमको उसका अमल जो है उसके ऊपर इंतजार करना चाहिए।
नवाज शरीफ ने ये भी कहा है कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बढ़ाने के प्रयास होते हैं, उसको डिरेल करने की जानबूझकर कोशिश की जाती है। इस वक्तव्य को आप कितना अहम मानते हैं?
ये उन्होंने एक सच्चाई जाहिर की है, तो उसमें अब ब्लेम अपोर्शन करना तो मेरा ख्याल ठीक बात नहीं होगी। हमको यही देखना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने, जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, अगर उनके अगेंस्ट कॉन्क्रीट एक्शन लिया इस बार, तो शायद एक नया इतिहास का पेज हम दोनों देशों के बीच में शुरू हो सकता है।
ये थे पूर्व राजनयिक राजीव ठोकरा। पठानकोट एयरबेस पर हुए चरमपंथी हमले के लिए पंजाब पुलिस की भूमिका की खासी आलोचना हो रही है। भारत में पुलिस के राजनीतिकरण, पुलिस सुधार जैसे मुद्दों पर सालों से बातें होती रही हैं, लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। पिछले कुछ सालों से पंजाब में बढ़ती ड्रग्स की उपलब्धता पर भी प्रशासन पर उंगलियां उठती रही हैं। विनीत खरे ने पंजाब के पूर्व डीजीपी केएस ढिल्लों से बात की।
बहुत सारी इंस्टीट्यूशन बन गई हैं, अब वो सभी एक ही जगह देखती हैं, और खासकर जब ये आर्मी का मामला है तो इसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है, आईबी भी इन्वॉल्व है, आरएडब्ल्यू भी इन्वॉल्व है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो है ही है। पंजाब पुलिस और स्टेट की पुलिस जहाँ पे भी होगी उनको सेकेंडरी रोल मिलता है, और पंजाब के हिस्ट्री और तजुर्बे की वजह से वो समझते हैं कि वो एंटी टेररिज्म में बहुत सारे माहिर हैं, तो इसलिए वो आपस में कुछ थोड़ा सा इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ये तो बात है कि पंजाब पुलिस का तजुर्बा तो था, लेकिन वो तजुर्बा डिफरेंट काइंड का था, डिफरेंट किस्म का था वो। और ये जो है डिटर्मिनेशन जो ये पाकिस्तानी टेररिस्ट दिखाते हैं वो नहीं था पहले, जो सिख मिलिटेंसी होती थी डिफरेंट काइंड, 30 साल पुरानी थी, ये सारे मॉडर्न है, तो इनकी सपोर्ट भी है। वो जो एसपी जो सलविंदर सिंह की बात थी, वो दूसरे जिले में क्या करने जा रहे थे इतना अपने एसयूवी में,
वो कहना है कि वो धार्मिक काम के लिए गए हुए थे, वापस लौट रहे थे।
नहीं, धार्मिक काम ऐसा थोड़ी होता है कि एसयूवी जो इतनी बड़ी होती है वो इसमें एकदम ओवरपावर कर ले कोई बाहर से आके, इट इज नॉट पॉसिबल, तो कोई रेजिस्ट कर सकते थे वो, ऐसे थोड़ी दरवाजा खोल देते हैं एकदम। पुलिस ऑफिसर की ये जो ऐसे एरिया में जब ट्रेवल करता है पुलिस ऑफिसर, तो उसको हमेशा इस बात की तो कॉशन लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए कि कोई भी क्या हो सकता है। तो कैसे वो पकड़े गए, कैसे ही वो थ्रोन आउट ऑफ द कार वगैरह वगैरह, जो इंस्टीट्यूशनल डिके है हमारे मुल्क में, कुछ सालों से चल रही है और इतनी सारी सीनियर पोस्ट बन गई हैं जिससे कि क्वालिटी ऑफ सीनियर ऑफिसर भी कम हो गई है, उसी वजह से ये सब बातें होती है। लेकिन हुआ क्या है उसमें अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है।
पिछले कुछ सालों में हमने देखा ड्रग की अवेलेबिलिटी बढ़ी है और बिना किसी स्तर पर किसी लेवल पर एस्टैब्लिशमेंट सपोर्ट के ये सब चीजें शायद इतनी आसान ना हो।
हाँ नहीं ये तो है, बिल्कुल ठीक बात है। ये जहाँ पे भी ये चीजें बढ़ती है तो पॉलिटिकल सपोर्ट होती है, यूजुअली पॉलिटिकल सपोर्ट होती है। और क्योंकि पंजाब पुलिस इज हाईली पॉलिटिसाइज्ड पुलिस हमेशा ही रही है, वहाँ पे जैल सिंह दरबारा सिंह के टाइम पे फैक्शन थे, बाद में भी है, तो पॉलिटिसाइज्ड पुलिस हो जाती है तो वो उनके भी इंटरेस्ट इसी में हो जाते हैं। वो तो है, पंजाब में कितने सारे तो कार्टल्स हैं जो स्मगलिंग करते हैं, अन पॉलिटिकल सपोर्ट है उनको, लिंक्स है उनके, तो पुलिस की ट्रेनिंग नहीं हो पाती जितनी, क्योंकि इतनी सारी पुलिस हो गई है। जब मैं एक मिसाल ये देता हूँ कि मैं जब 84 में गया था 31,000 होती थी पुलिस की स्ट्रेंथ, अभी कोई 80,000 के करीब है, तो उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं हो सकती पूरी बराबर, उनकी वो मॉनिटरिंग नहीं हो सकती, पुलिस के जो लीडर्स हैं वो सारे पॉलिटिसाइज हो गए हैं, तो ये इट इज वेरी नॉर्मल।
सर आने वाले दिनों में फिर हम क्या देखते हैं, मतलब अगर हम पंजाब से बाहर की बात करें या फिर पंजाब की ही बात करें, तो आने वाले दिनों में इस तरह के चैलेंजेस किस तरह से बढ़ेंगे और क्या किए जाने की जरूरत है?
हाँ नहीं, ये जो फ्रंट लाइन स्टेट्स है जो पंजाब जैसे है उसमें तो उनके हथियार भी काफी दिए गए हैं, लेकिन वो विल नहीं है, कम्प्लेसेंसी है, और जो पॉलिटिशियन जो लीड करते हैं उनके इंटरेस्ट कुछ दूसरे होते हैं। मैं ये क्लेम करता हूँ कि अब नेशनल पुलिस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी उसको 30-35 साल हो गए हैं, अगर वो एक पूरी जनरेशन हो गई है, अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती तो ये इस किस्म के वाकये इस तरह से नहीं होते उस टाइम पे।
ये थे पंजाब के पूर्व DGP KS ढिल्लो।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। शिया धर्मगुरु निम्र बाकिर अल निम्र को फांसी दिए जाने के बाद शिया बाहुल्य ईरान और सुन्नी बाहुल्य वाले सऊदी अरब में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां एक और फांसी के बाद तेहरान में सऊदी दूतावास की इमारत को गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी और सऊदी अरब ने ईरान से सभी कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए। हालांकि सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि ईरान से रिश्ते टूटने की वजह से सीरिया में चल रहे उनके शांति कायम करने की कोशिशों में कोई कमी नहीं आएगी। अमेरिका ने इस विवाद पर चिंता जाहिर करते हुए दोनों देशों को कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखने की बात कही है। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुनिए वैभव श्रीवास्तव से।
मध्य पूर्व में चल रहा तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा। पहले सऊदी अरब, फिर बहरीन और सूडान, और अब कुवैत ने घोषणा की है कि ये सभी देश ईरान से सभी कूटनीतिक संबंध तोड़ रहे हैं। कुवैत ने कहा कि वो अपने राजनयिक को ईरान से वापस बुला रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से आए बयान में सऊदी दूतावास पर हुए हमले की कड़ी निंदा की गई है, परंतु शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र को फांसी दिए जाने की कोई बात नहीं की गई। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी राजदूत अब्दुल्ला अल मौलमी ने कहा कि अगर ईरान सऊदी अरब के आंतरिक मसलों में दखल देना बंद कर दे तो तनाव खत्म हो सकता है।
We are not natural born enemies with Iran. It is only the behavior of the Iranian government.
हम स्वाभाविक या कुदरती दुश्मन नहीं हैं। ये सिर्फ ईरान सरकार का रवैया है जिसमें दूसरे देशों के आंतरिक मसलों में दखल दिया जाता है, खासकर अरब देशों और हमारे देश में, जिसकी वजह से हमें ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ रहा है। जहां सुन्नी मुसलमान बहुल्य वाले सऊदी अरब और शिया बहुल्य ईरान सीरिया और यमन में चल रहे युद्ध में भी अलग अलग गुटों के सहयोगी हैं, सऊदी अरब के राजदूत के अनुसार शांति कायम करने की कोशिशों में सऊदी अरब लगातार मदद करता रहेगा।
From our side, it should have no effect because we will continue to work very hard towards,
हमारी ओर से सीरिया के शांति प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी। यमन में हमारी जैसी जरूरत होगी हम वैसे ही करेंगे। ईरान किस तरह प्रतिक्रिया देगा ये हम नहीं बता सकते, पर कूटनीतिक रिश्ते टूटने से पहले भी ईरान शांति प्रयासों को ज्यादा समर्थन नहीं दे रहा था। वो भड़काऊ और गलत तरीके अपना रहे हैं और हमें नहीं लगता कि इस तरह रिश्ते टूटने से भी ईरान पर कोई असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी राजदूत अब्दुल्ला अल मौलमी के शब्द। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस ने कहा कि अमरीका ने सऊदी अरब को पहले भी चेतावनी दी थी कि इस तरह से इतने बड़े स्तर पर फांसी देने के उग्र परिणाम हो सकते हैं. उन्होंने कहा,
We do continue to be concerned about the need for both
हम इस बात से परेशान हैं कि ईरान और सऊदी अरब दोनों को ही आपसी रिश्ते जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत है ताकि मध्य पूर्व की स्थिति और ज्यादा ना बिगड़ जाए. हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि दोनों पक्ष संयम रखें और उस तनाव को रोकें जो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉश अर्नेस्ट के शब्द, सऊदी अरब और ईरान के बीच मतभेद उस वक्त शुरू हुआ जब चरमपंथ फैलाने के आरोपों पर सऊदी अरब ने शिया धर्मगुरु शेख निम्र अल निम्र को फांसी दे दी. 2 जनवरी शनिवार को सऊदी अरब द्वारा शेख निम्र के साथ 46 और लोगों को फांसी दिए जाने के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब के दूतावास पर हमला हुआ और इमारत को आग लगा दी गई. इसके बाद सऊदी अरब ने ये साफ कर दिया कि वो ईरान के साथ कूटनीतिक रिश्ते तोड़ रहा है और सभी हवाई परिवहन और व्यावसायिक रिश्ते रोक दिए. सीरिया और यमन में चल रहे हंगामे के साथ साथ अब सऊदी अरब और ईरान के बीच भी तनाव बढ़ गया है. देखना यह है कि चरमपंथ के खिलाफ और सीरिया में शांति स्थापित करने के प्रयासों पर इसका क्या असर पड़ता है.
कुवैत ने भी ईरान से कूटनीतिक संबंध तोड़े.
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है.
क्रिकेट में आए दिन नए रिकॉर्ड बनते हैं और पुराने टूट जाते हैं, लेकिन मुंबई में एक ऐसा रिकॉर्ड बना है जिसे तोड़ने में पता नहीं कितने साल लग जाएं. स्कूली क्रिकेट में प्रणव धनावड़े ने 1000 रनों की व्यक्तिगत पारी खेलकर सबको चौंका दिया है. प्रणव ने अंतर स्कूल टूर्नामेंट में नॉट आउट 1009 रन बनाकर नया इतिहास रच दिया. वो क्रिकेट इतिहास में 4 अंकों का स्कोर बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. केसी गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से खेल रहे 15 वर्षीय धनावड़े ने मुंबई क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित भंडारी कप अंतर स्कूल टूर्नामेंट में आर्य गुरुकुल के खिलाफ केवल 323 गेंदों पर यह स्कोर बनाया और उनका स्ट्राइक रेट था 312.38. हमारे साथी आयुष देश पांडे ने प्रणव धनावड़े से पूछा कि आप बहुत थक गए होंगे इतनी लंबी पारी खेलकर.
बहुत थका हूं.
और क्या आपने रन गिने थे अपने? मैं ये जानना चाहूंगा.
नहीं, मैं रन कभी बैटिंग के टाइम गिनता नहीं. कभी भी जब रन करता हूं तब गिनता नहीं मैं बैटिंग के टाइम.
अच्छा, आपने जब खेलना शुरू किया, जब मैच स्टार्ट हुआ, पहला दिन बैटिंग पे उतरे, क्या सोच के उतरे थे आप उस दिन?
मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं उतरा कि मेरे को इतना रिकॉर्ड करने का है वगैरह. मैं मेरा बैटिंग करते गया, रिकॉर्ड के नजदीक आया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ और मैंने कर दिया.
कितने रनों के बाद अपने रन पर ध्यान देना बंद कर दिया था और कब वापस ध्यान आया?
नहीं, मैं रन पे ध्यान नहीं था. मैं जब स्कोर गिनते नहीं हुए बैटिंग के टाइम, अंदर से मेरे टीम वाले बोलते हैं इतना इतना स्कोर हुआ है, उसमें मैं ध्यान देता हूँ बस.
प्रणव, आपके पापा क्या करते हैं और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए.
मेरे पापा बेसिकली रिक्शा ड्राइवर, उनकी खुद की ऑटो है और मेरी मम्मी का कैटरिंग है खुद का.
कितना सपोर्ट आपके पेरेंट्स आपको करते हैं? पापा क्या कहते हैं क्रिकेट खेलने के बारे में और पढ़ाई करने के बारे में?
पापा का भी बहुत सपोर्ट है, मम्मी का भी बहुत सपोर्ट है. और पापा बचपन से, मतलब मेरे पापा ने मेरे को क्रिकेट में डाला. पापा ने मतलब मेरे को क्रिकेट की बहुत चाहत थी, तो मेरे पापा ने मेरी वो चाहत पूरी की, पसंद पूरी की.
कितने साल की उम्र थी जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया?
मैं जब 5 साल का था तब मैंने क्रिकेट खेलना चालू किया.
और देखना कब से शुरू किया?
क्रिकेट बचपन से ही देखता हूँ.
कौन रहे हैं आपके आदर्श प्रणव?
मेरा आदर्श सचिन तेंदुलकर है.
और बॉलिंग में? अगर
बॉलिंग तो मैं करता हूँ, कीपिंग करता हूँ. कीपिंग में ब्रैड एडिन ऑस्ट्रेलिया का.
कौन सा शॉट आपका फेवरेट शॉट रहता है खेलने में? जैसे अगर आपने सचिन तेंदुलकर की देखी हो तो उनका लेग ग्लांस
और कवर्ड रन उनका बहुत अच्छा, मेरे को दोनों शॉट अच्छे लगते.
क्रिकेट के प्रति भारत में बहुत ज्यादा प्यार है. क्या आपको लगता है कि ये खेल अगर क्रिकेट नहीं होता या किसी और में आपने इतना बड़ा कीर्तिमान बनाया होता, तो क्या इतना मीडिया सब आपके साथ शुरू होता, आपके साथ आज खड़ा होता?
मेरे को तो ऐसा लगता नहीं, पर क्रिकेट की वजह से, क्रिकेट की मतलब क्रिकेट इतना फेमस है अपने इंडिया में, उसकी वजह से इतना ये मीडिया आ गई.
प्रणव, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आने वाले वर्षों में आपका क्या एम है? आपकी उम्र 15 साल है अगर मैं गलत नहीं हूँ. 16-17 साल से लोग अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख सकते हैं ऐसा मेरा मानना है. क्या आपको लगता है कि आप रखने के लिए तैयार हैं अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम?
मैं तैयार हूँ, पर मेरा पहला एम तो अभी अंडर-19 स्टेट के टीम में खेलने का, ये एम है मेरा. बाद में जैसा चांस मिलेगा अंडर-23 रणजी जैसा चांस मिलेगा वैसा।
और प्रणव, बहुत सारे लोग मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रणव इतना सारा मीडिया जो अटेंशन मिल गया है आज उसे, आज तो मैंने देखा आपको कि आज आप बहुत थक गए हैं, हाँ। क्या कल आपको जाके ऐसा लगेगा कि यार मैं आज बहुत बड़ा स्टार हो गया, या कल भी आपके पैर जमीन पर रहेंगे और इसी क्रीज पर आपके पैर रहेंगे?
कल मैं जितना भी बड़ा होगा तो मेरे पैर जमीन पर रहेंगे, मैं हवा में नहीं जाऊंगा। मैं जो जितना बड़ा होगा तो मेरे क्रीज पे ही पैर रहेंगे, हवा में नहीं जाऊंगा।
प्रणव, पढ़ाई और खेल में कैसा संतुलन बनाते हैं आप?
पढ़ाई तो अभी 10th है, उसके थोड़ा पढ़ाई पे ज्यादा ये देता हूँ, मैं ध्यान देता हूँ। इससे पहले मैं क्रिकेट पे बस ध्यान देता हूँ, जब एग्जाम सर जीते पढ़ाई करता था मैं बस।
प्रणव, आने वाले दिनों में क्या आपके प्लान है क्रिकेट को लेकर, किस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे इस बारे में?
अभी और अच्छे से मैं मेहनत करूंगा और अच्छा प्रैक्टिस करूंगा।
रिकॉर्ड ब्रेकर प्रणव धनावड़े से बात कर रहे थे आयुष देशपांडे। भारतीय क्रिकेट के संकट मोचन कहे जाने वाले वेरी वेरी स्पेशल के नाम से मशहूर वीवीएस लक्ष्मण की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2001 में खेली गई 281 रनों की पारी को पिछले 50 सालों में टेस्ट क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ पारी माना गया है। राहुल द्रविड़ की जगह लक्ष्मण को नंबर 3 पर खिलाने का काम किया था उस सीरीज के मैनेजर चेतन चौहान ने। सुनिए खुद चेतन चौहान से ऐसी दास्तां जो इतिहास बन गई। चेतन चौहान से बात की हमारे साथी आदेश कुमार गुप्त ने।
देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये जो पारी उन्होंने खेली थी 281 रन की, वो बहुत ही बेहतरीन थी, आउट ऑफ द वर्ल्ड थी और बिल्कुल समय पर थी, क्योंकि उस टेस्ट मैच में मैं मैनेजर था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और जब वो पहली इनिंग में इंडिया जल्दी आउट हो गई, 50 या कुछ रन बनाए थे उन्होंने, तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे ऐसी पूछा कि क्या आप 3 नंबर बैटिंग करना चाहोगे? बोले कि सर, दैट इज वेयर आई हैव बैटेड ऑल माय करियर, ऑल माय लाइफ। तो फिर मैंने जो है जॉन राइट कोच थे, मैंने उनसे बात की और उसके बाद फिर कप्तान को बताया गया, और क्योंकि राहुल द्रविड 3 नंबर बैटिंग करते थे तो उनको कहा गया कि आप नहीं जा रहे हो, बुरा मत मानना दोनों। और वेरी नाइस ऑफ राहुल द्रविड ऑल्सो, उन्होंने कहा कि ठीक है सर, एनीथिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द गेम। और उनको 3 नंबर भेजा गया सेकेंड इनिंग में। हम लोग फॉलो ऑन कर रहे थे, 274 रन हम पीछे थे और बहुत बुरी स्थिति थी। पहला टेस्ट मैच हम बुरी तरीके से हार गए, लेकिन जो पारी उन्होंने खेली, आउट ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जाता है, कि बहुत ही आश्चर्यजनक थी, बहुत ही उपयुक्त समय पर थी। पूरा उन्होंने डिटर्मिनेशन के साथ और किसी प्रकार से वो दबाव में नहीं आए, बिल्कुल फ्री होकर खेले, जैसे वीवीएस लक्ष्मण जाने जाते हैं अपने खेल के लिए। और पूरी जो लीड थी 274 रन की, वो लीड पूरी की। उसके बाद हमको हमने और ज्यादा रन बना लिए, हमने उनको बैटिंग कराई 5वें दिन आखिरी दिन, और ऑस्ट्रेलिया को हमने आउट कर दिया और हम लोग टेस्ट मैच जीत गए। जो लगभग 14 या 15 टेस्ट मैच लगातार जीत रहे थे, तो ये जो उनकी एक जो सिलसिला चल रहा था वो उसको भी हम लोगों ने भारत में रोक दिया, और इसका पूरी तरीके से जो श्रेय जाता है वो वीवीएस लक्ष्मण को जाता है।
आपने जिक्र किया राहुल द्रविड़ की महानता का, कि जब आपने उन्हें बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि सर, आप तो सीनियर हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं और टीम के हित के लिए मैं कहीं भी खेलने को तैयार हूं। तो ये कुल मिलाकर टोटल बातचीत क्या रही?
देखिए, बहुत ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि क्या हो रहा था कि राहुल द्रविड़ भी इतने सीनियर प्लेयर थे, उनको कौन बोले। और ये काम जो है फिर मेरे ऊपर सौंपा गया, क्योंकि मैं मैनेजर था, कप्तान भी कुछ ज्यादा नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है किसी भी प्लेयर को जो 3 नंबर पर बैटिंग इतने सालों से कर रहा है, एकदम से आप उसको बोलो कि आप नहीं जाएंगे बैटिंग करने के लिए, तो कभी कभी हो जाता है ना, रिएक्शन भी हो जाता है, प्लेयर बुरा भी मान जाता है। और बहुत सीनियर प्लेयर थे राहुल द्रविड और महान प्लेयर बल्लेबाज भी थे, तो ये काम जो है फिर मुझे सौंपा गया और फिर मैं चुपचाप गया, उनसे मैंने बात करी और तो बिल्कुल मान गए। और मैं समझता हूँ कि ये उनकी मानता है, बड़प्पन है उनका, कोई बुरा नहीं माना। और फिर वो 6 नंबर पर बैटिंग गए और उन्होंने भी 181 रन उन्होंने बनाए। बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई वीवीएस लक्ष्मण की और राहुल द्रविड़ की, जिसने भारत को एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा दिया। और वहां पर फिर हमने 5वें दिन जो है ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करने के लिए दिया और लंच के पहले ही, और ऑस्ट्रेलिया का हमने ऑल आउट कर दिया और हम लोग वो टेस्ट मैच जीत गए।
चेतन चौहान से बात कर रहे थे आदेश गुप्त। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर पठानकोट हमले पर दुख जताया है। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पठानकोट एयरबेस में हुआ हमला चिंता का विषय है। मुंबई के एचटी भंडारी इंटर स्कूल कप अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रणव धनावड़े ने क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी पारी खेलने का करिश्मा कर दिखाया। उन्होंने 323 गेंदों पर नाबाद 1009 रन बनाए। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की तिलक भाटिया ने। रेहान फदल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।